नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और किसानों की आय बढ़ाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। केंद्र सरकार ने राज्यों में प्रवासी मजदूरों को वितरित किए जाने वाले 5 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडरों के दैनिक आवंटन को दोगुना करने का निर्णय किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, इग्नू ने दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा को सुलभ बनाया। विश्वविद्यालय के 39वें दीक्षांत समारोह में 3.25 लाख विद्यार्थियों को उपाधियां दी गईं। और प्रदेश में आंधी बारिश का दौर जारी, राज्य के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से पहला क्षेत्रीय सम्मेलन जयपुर में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा राजस्थान सहित महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और गोवा के कृषि मंत्रियों, कृषि वैज्ञानिकों, अधिकारियों, प्रगतिशील किसानों, कृषि से जुड़े विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और किसानों की आय बढ़ाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए ठोस और बहुआयामी प्रयास किए जा रहे हैं। सम्मेलन के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए श्री चौहान ने कहा कि कृषि से जुड़े हर राज्य के मुद्दे हैं, उन पर विस्तार से विमर्श के लिए ये पहला क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ है। ऐसे अन्य क्षेत्रीय सम्मेलन और आयोजित होंगे। उन्होंने कहा कि अगले 3 महीने में देश के सभी किसानों की आईडी बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। ये आईडी किसानों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी
और मेरा विश्वास है कि 3 महीने के अंदर सभी किसानों का एक पहचान अलग फार्मर आईडी के माध्यम से हो जाएगी। और फिर फार्मर आईडी का उपयोग हम अगले सीजन से खाद के वितरण में भी, जैसा मध्य प्रदेश में हुआ है, हम करेंगे। मतलब किसान खाद लेने के लिए स्वतंत्र होगा, लेकिन फार्मर आईडी के माध्यम से कितनी खाद चाहिए इसका सटीक अंदाज लग सकेगा।
सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों से पारंपरिक खेती के बजाय प्रौद्योगिकी आधारित और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने का आह्वान किया। साथ ही फसल चयन और खेती के तरीकों के लिए कृषि वैज्ञानिकों से परामर्श लेने की सलाह दी।
किसान की आय दुगनी करेंगे, किसान को विकसित करेंगे, और किसान हमारा विकसित होगा तो हमारा प्रदेश भी विकसित होगा और हमारा देश भी विकसित होगा। आज इस तरह की सेमिनार पहली बार हो रही है। इसमें सभी वैज्ञानिक मौजूद हैं, उत्कृष्ट किसान मौजूद हैं, हमारे सभी अनुसंधान वाले मौजूद हैं। निश्चित रूप से जब यह मंथन होगा तो इस मंथन में से अच्छी बातें निकलेंगी और हमारे किसान का उद्धार होगा, ये मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है। खेती को जब तक हम वैज्ञानिक परक नहीं बनाएंगे, खेती वो करनी चाहिए जिसमें किसान का लाभ हो, बाजार ठीक हो, उसका भाव ठीक मिले, हमें नई तरीके अपनाने चाहिए।
केंद्र सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और पीएनजी की आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि किसी भी एलपीजी वितरक केंद्र पर आपूर्ति में कमी की कोई सूचना नहीं है। उन्होंने बताया कि सभी पेट्रोल पंप सामान्य रूप से चल रहे हैं और पेट्रोल तथा डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। सुश्री शर्मा ने कहा कि एलपीजी सिलेंडरों की डिलीवरी भी सुचारू रूप से जारी है और ऑनलाइन एलपीजी बुकिंग लगभग 96% तक हो गई है। उन्होंने कहा कि कुल वाणिज्यिक एलपीजी आवंटन संकट पूर्व स्तरों के लगभग 70% तक बढ़ा दिया गया है। इस बीच सरकार ने राज्यों में प्रवासी मजदूरों को वितरित किए जाने वाले 5 किलोग्राम के मुक्त व्यापार एलपीजी सिलेंडरों के दैनिक आवंटन को दोगुना करने का निर्णय किया है। पेट्रोलियम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव डॉ नीरज मित्तल ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है। इस बीच राज्य सरकार प्रदेश में घरेलू गैस आपूर्ति पर नजर बनाए हुए है। पाली में रसद विभाग की ओर से लोगों को मांगलिक समारोहों में विभिन्न आवश्यकताओं के लिए कमर्शियल सिलेंडर उपलब्ध करवाने की पहल की गई है। जिला रसद अधिकारी कमल ने बताया कि इसके लिए लोगों को जिला रसद कार्यालय में निमंत्रण पत्र के साथ प्रार्थना पत्र पेश करना होगा। आयोजन से 10 दिन पहले ये प्रक्रिया पूरी करनी होगी। उन्होंने लोगों से ईंधन के वैकल्पिक साधन अपनाने की अपील की।
मेरा सभी से निवेदन है कि जो भी शादियों के फंक्शन है वो अपने गैस उपयोगिता में थोड़ा मितव्यता बरते और गैस के साथ साथ कुछ अल्टरनेट साधन जैसे बत्ती है, लकड़ी है या तंदूरी है, इस टाइप के अल्टरनेट साधनों का भी उपयोग करें ताकि गैस पर निर्भरता थोड़ी कम हो जाए। फिर भी आश्वस्त करते हैं जैसे स्टॉक उपलब्ध हो रहा है वैसे वैसे सबको थोड़ा थोड़ा स्टॉक हम उनकी मांग के अनुसार उपलब्ध करवा रहे हैं।
उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसके नागरिकों के ज्ञान, मूल्यों और क्षमताओं में निहित होती है। वे आज नई दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू के 39वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्री राधा कृष्णन ने कहा कि इग्नू ने सुलभ शिक्षा के माध्यम से पूरे देश को जोड़कर शिक्षा के क्षेत्र के परिदृश्य को बदल दिया है। उन्होंने इग्नू को राष्ट्र के मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र का स्तंभ बताते हुए कहा कि विश्वविद्यालय ने शिक्षा को सुलभ बनाया है। दीक्षांत समारोह में 3,24,000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं। इधर इग्नू के जयपुर स्थित क्षेत्रीय केंद्र में भी दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद सभागार में हुए इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा ने शिरकत की। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। राज्य में जनगणना 2027 के पहले चरण के लिए आज से मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण शुरू हुआ। 10 अप्रैल तक चलने वाले इस प्रशिक्षण में राज्य के सभी जिलों से आए 41 मास्टर ट्रेनर शामिल हो रहे हैं। साथ ही जयपुर के जनगणना कार्यालय से नामित 33 मास्टर ट्रेनर भी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को पूरे उत्साह के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने को कहा। मीडिया से बातचीत में मुख्य सचिव ने कहा कि जनगणना 2027 पूरी तरह डिजिटल होगी और इसमें कई नवाचार किए गए हैं।
डिजिटल सेंसस 2027 में कई नवाचार भारत सरकार द्वारा लागू किए गए हैं। टू फेज सेंसस है। फर्स्ट फेज में हाउस होल्ड सर्वे होगा, सेकंड फेज में पॉपुलेशन एन्यूमरेशन होगा और इसी क्रम में एआई बेस्ड एनालिसिस इन लोगों ने लाए हैं। क्वेश्चनर्स को काफी सिंप्लीफाई किया गया है। जो फॉर्म सिंप्लीफिकेशन के साथ साथ डिजिटल फॉर्मेट्स जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं ये कई नवाचारों में से गिना जा सकता है।
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रालसा की ओर से 8वीं से 12वीं कक्षा तक के बच्चों में कानूनी जागरूकता बढ़ाने के लिए आज से विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के जरिए विद्यार्थियों को संवैधानिक मूल्यों, अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी दी जाएगी। विद्यार्थियों को इसके तहत हर मंगलवार को कानूनी प्रावधान और अधिकारों के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। प्रदेश के करीब 1400 न्यायिक अधिकारी स्कूलों में जाकर विद्यार्थियों को जागरूक करेंगे। रालसा के सदस्य सचिव हरिओम अत्री ने बताया कि विद्यार्थियों की समस्या के समाधान के लिए स्कूलों में कोर्ट वाली दीदी के नाम से विशेष शिकायत और सुझाव पेटियां लगाई जाएंगी।
बच्चे अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, पेरेंट्स से भी नहीं बात हो पाती है उनकी और स्कूल में भी ऐसा उनको वातावरण नहीं मिल रहा है। तो हमने इसके ऊपर विचार विमर्श कर ये रखा कि कोर्ट वाली दीदी का कंसेप्ट लेके आए हम। एक बॉक्स है जो स्कूल में इन कार्यक्रमों के दौरान जाएगा पर एक दिन के लिए वो वहां पर उपस्थित रहेगा बॉक्स वहां पर, और बच्चे जो है अगर उनकी कोई पर्सनल ग्रीवेंसेज है तो वो अपनी शिकायत उस पेटी में डाल देगी कि उनका समाधान करेंगे।
और अब मौसम। प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलने से आंधी बारिश का दौर लगातार जारी है। राज्य के कई जिलों में आज भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। सवाईमाधोपुर, बारा, डीग और भरतपुर जिलों में दोपहर बाद आंधी के साथ झमाझम बरसात हुई। भरतपुर में आंधी से कई जगह पेड़ उखड़ गए और होर्डिंग्स उड़ गए। जालौर में दोपहर बाद अचानक मौसम में बदलाव आ जाने से धूल भरी आंधी चली और घने बादल छा गए। कोटा और आसपास के क्षेत्रों में आज मौसम के कई रंग देखने को मिले। दिन भर धूप और बादलों की लुकाछिपी का दौर जारी रहा। जिले के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हुई। बाड़मेर में आज लगातार दूसरे दिन आंधी का दौर जारी रहा, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। इस बीच मौसम केंद्र जयपुर ने आज उत्तर पूर्व के 15 से ज्यादा जिलों के लिए आंधी, बारिश और कहीं कहीं ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 15 से ज्यादा जिलों के लिए येलो अलर्ट किया गया है। केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि ज्यादातर जिलों में आंधी बारिश का सिलसिला कल दोपहर तक जारी रहेगा।
फिलहाल एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पश्चिमी राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। इस मजबूत विक्षोभ का प्रभाव अगले 24 घंटों के दौरान खासकर राज्य के पूर्वी और उत्तरी भागों में जारी रहने की संभावना है और इसके बाद आगामी 4-5 दिन सभी भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। साथ ही अगले 2-3 दिनों बाद तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है।
आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। इसकी थीम टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विद साइंस रखी गई है। ये थीम स्वस्थ जीवन के लिए एकजुटता और वैज्ञानिक सहयोग की शक्ति को दर्शाती है। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर आज जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में आयुर्वेद अधिवेशन और सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री और आयुष मंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा ने शिरकत की। इस दौरान आयुर्वेद के महत्व, भारतीय चिकित्सा पद्धति की वैज्ञानिक परंपरा और स्वस्थ समाज के निर्माण में इसकी भूमिका पर चर्चा की गई। साथ ही आयुर्वेद के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विद्वानों और चिकित्सकों को सम्मानित किया गया। संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतिस्पर्धा के लिए देश भर के फिल्म निर्माताओं और रचनात्मक व्यक्तियों को आमंत्रित किया है। अपनी अद्भुत किस्सा गोई के जरिए वंदे मातरम की भावना को दर्शाने के लिए यह प्रतिस्पर्धा राष्ट्र के प्रति गौरव को प्रदर्शित करने में अपनी रचनात्मकता, नवाचार और सिनेमाई कौशल को व्यक्त करने के लिए प्रतिभागियों को एक मंच प्रदान करती है। प्रतिभागी अपनी फिल्म प्रविष्टियां ऑनलाइन भेज सकते हैं। चयनित प्रविष्टियों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी जाएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और किसानों की आय बढ़ाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। केंद्र सरकार ने राज्यों में प्रवासी मजदूरों को वितरित किए जाने वाले 5 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडरों के दैनिक आवंटन को 2 गुना करने का निर्णय किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, इग्नू ने दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा को सुलभ बनाया। और प्रदेश में आंधी बारिश का दौर जारी, राज्य के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।